नमस्करोमि भूमित्रगणाः, अहं लीना मेहन्दळे उपस्थिता अस्मि रेडियो मधुबनस्य श्राव्यमञ्चे। आरम्भं करोमि अस्माकं प्रियकार्यक्रमं पठामि संस्कृतम् इति। वयं पातञ्जलयोगसूत्रस्य आरम्भं कृतवन्तः। अद्य 43 सूत्रम् आरम्भं करोमि। अर्थात् हे मित्रगण, रेडियो मधुबन के कार्यक्रम में हमने अपना प्रिय कार्यक्रम पठामि संस्कृतम पढ़ते हुए पतंजल योग सूत्रों का अभ्यास शुरू किया था। उसी का 43वां सूत्र, 43वां सूत्रम आज आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा सा याद दिला दूं कि जैसे हम हिंदी में गिनते हैं 41, 42, 43, 44, तो ये अंकों का नामकरण करते समय इकाई का अंक पहले कहने की पद्धति संस्कृत में और सभी भारतीय भाषाओं में है। पहले इकाई का अंक कहा जाएगा, फिर दहाई का, फिर शतम का। अंकों का जब नामकरण करते हैं तो इस प्रकार करते हैं। इसलिए 41 अर्थात पहले हम एक शब्द कहते हैं, फिर 40 कहते हैं। इससे बोध होता है कि एक का अंक हमारी इकाई में है। उसी तरह से अभी मैंने कहा 43वां सूत्रम, तो तमम का अर्थ हुआ वां, 43वां, लेकिन 43 के लिए शब्द हो गया 43। तो यहाँ भी पहले हमने त्रि कहा, फिर हमने 43 कहा। और ये याद रखना कि अंकों के लिए यही पद्धति पूरे भारतवर्ष में चलती है। मैं मराठी में भी कहूँ, बंगाली में भी कहूँ, या तमिल तेलुगु में भी कहूँ, तो भी इसी पद्धति से हम आंकड़े कहते हैं। तो अगर हमें समझना हो कि यह एक रूपता हमारे पूरे राष्ट्र में किस प्रकार व्याप्त है, तो हम देखते हैं कि इन छोटी छोटी बातों में भी, इन छोटे छोटे प्रबंधनों में भी हम किस प्रकार एक रूपता से रहते हैं। और यही बात हमारी पूरी भारत की एकत्रित संस्कृति को बयां करती है। भले ही हमारी भाषाएं अलग हों या उनकी लिपियां अलग हों, पर उनके पीछे जो विचार सन्निहित है और जो प्रबंधन सन्निहित है, वो सारा बहुत ही एक रूप और एकात्म है। तो चलो पतंजलि मुनि के अगले सूत्र को देखते हैं, 43वें सूत्र को देखते हैं। अगला सूत्र कहते हैं, स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येवार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का। यहाँ पर परिशुद्धि का अर्थ है त्याग देना। तो जब प्रज्ञा की जागृति के लिए शब्द, शब्दार्थ और ज्ञान, इस त्रिपुटी की आवश्यकता पड़ी, तो उसे सवितर्का समापत्ति कहा गया। लेकिन इस सूत्र में मुनि कहते हैं कि जब हम उन्हें भी छोड़ देंगे, उनकी भी परिशुद्धि कर देंगे, अर्थात उस त्रिपुटी को भी हम छोड़ देंगे, जब साधक उस त्रिपुटी को भी छोड़ देगा, तब उसे निर्वितर्का समापत्ति कहेंगे। और उसका वर्णन किया गया है कि यह निर्वितर्का समापत्ति कैसी होती है। तो स्वरूप शून्येव अर्थात स्वरूप शून्या इव अर्थमात्र निर्भासा। प्रज्ञा मानो ऐसी हो जाती है कि उसका अपना रूप शून्यवत हो जाता है, और अर्थमात्र निर्भासा, और वह अर्थ के साथ एक रूप हो जाने के कारण अर्थ का ही आभास निर्माण करती है, अर्थ की आभासी हो जाती है। इसीलिए ऐसी प्रज्ञा के लिए अर्थमात्र निर्भासा इस पद का उपयोग किया गया है। और अगला सूत्र कहते हैं, एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। तो मुनि कहते हैं कि इस प्रकार मैंने सविचार और निर्विचार दोनों प्रकार की प्रज्ञाओं का सूक्ष्मता से विवेचन कर दिया है। और यहाँ शब्द है सूक्ष्म विषया। तो जब तक बुद्धि या हमारा चित्त अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण नहीं करे तब तक यह सविचार अथवा निर्विचार प्रज्ञा साक्षात नहीं हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर सूक्ष्म विषया पद का उल्लेख किया गया है। और अगला सूत्र कहते हैं, सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम। तो यहाँ पर एक प्रक्रिया बता रहे हैं कि एक बार बुद्धि या चित्त को सूक्ष्म विषयत्व प्राप्त हो जाए, अर्थात वह एक सूक्ष्म चार पर, सूक्ष्म विषय पर अपने आप को केंद्रित कर ले, उसी का आकार वह ग्रहण करने लगे, कि फिर वह पंच तन्मात्राओं का भी अवलंबन छोड़ सकती है, आलंबन छोड़ सकती है, और उससे अधिक सूक्ष्म जो अहंकार है उसको आलंबन लेकर के अगले पड़ाव पर जाती है। और फिर जब अहंकार के आलंबन का अभ्यास हो जाता है तो फिर उससे भी अधिक सूक्ष्म जो महत तत्व है वहाँ चित्त एकाग्र हो जाता है, और उस एकाग्रता का, एकात्मता का अभ्यास हो जाने पर फिर महत से भी अधिक सूक्ष्म तत्व जो है वह है प्रकृति। तो फिर हमारा चित्त उस प्रकृति के साथ एकाकार होने लगता है, उतने सूक्ष्म स्वरूप को धारण कर लेता है, लेकिन फिर प्रकृति से सूक्ष्म और कुछ नहीं है, इसीलिए वह चित्त की स्थिति अलिंग पर्यवसानम कही जाएगी। क्योंकि लिंग का अर्थ है सूक्ष्म या सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अर्थात सूक्ष्मतर या सूक्ष्मतम। तो चूंकि प्रकृति से सूक्ष्मतम कुछ भी नहीं है, इसलिए प्रकृति तक चित्त एक बार पहुंच जाए फिर उससे अधिक सूक्ष्मता को चित्त नहीं पहुंच सकता है, इसीलिए चित्त की उस स्थिति को कहा गया अलिंग पर्यवसानम, अर्थात अब उससे अधिक चित्त का पर्यवसन किसी अन्य सूक्ष्मतम वस्तु में नहीं हो सकता है, प्रकृति ही सर्वाधिक सूक्ष्म है। तो यहाँ याद रखना पड़ेगा कि जिस प्रकृति की यहाँ बात हो रही है वही सूक्ष्मतम प्रकृति जो चित्त की एकाग्रता से साधी जा सकती है, देखी जा सकती है, उसका दर्शन हो सकता है या उसके साथ ग्राह्याकार हो सकता है, और वही प्रकृति इतने बड़े विश्व को निर्माण करती है, उसका संचलन करती है। इस प्रकार हमारे मुनियों ने पूरे ब्रह्मांड को एक अति सूक्ष्म भाव से जोड़ दिया है और यह प्रतिपादन किया है कि मनुष्य उस सूक्ष्मतम स्थिति तक पहुंच सकता है। अगला सूत्र कहते हैं कि ता एव सबीजः समाधिः। जब चित्त के लिए प्रकृति ही ग्राह्यालंबन बन जाती है, चित्त जब प्रकृति के साथ तदाकार हो जाता है, तो उस स्थिति को सबीज समाधि कहते हैं। सबीज इसलिए कि वह चित्त प्रकृति की बीज रूपता के साथ एकाकार हो गया है। लेकिन जैसा हमने देखा कि यह तो पातंजल योग सूत्र का पहला अध्याय है, पहला अध्याय सबीज समाधि तक आता है और इसके आगे साधक को निर्बीज समाधि तक पहुंचना है, उसी का वर्णन करते हैं अगले सूत्र में। निर्विचार वैशारद्ये ध्यात्म प्रसादः। यहाँ पर वैशारद्ये ध्यात्म प्रसादः यह बड़ी संधि है, वैशारद्य और अध्यात्म प्रसादः। तो जो निर्विचार सूक्ष्म विषय समापत्ति कही गई जो इसके पहले सूत्र में मुनि ने बताई, वहाँ पर चित्त सूक्ष्मातिसूक्ष्म विचारों से भी अलग हो जाता है, और चित्त की ऐसी अवस्था जो है उसी को अध्यात्म प्रसाद भी कहा गया है। तो इस प्रकार सवितर्क समापत्ति, निर्वितर्क समापत्ति की अगली सीढ़ियां हैं सविचार और निर्विचार समापत्तियां। और इस निर्विचार समापत्ति के साथ साथ चित्त का प्रकृति के बीज स्वरूप के साथ तदाकार भी हो जाता है, इसलिए चित्त अब सबीज समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है, जिसे अध्यात्म प्रसाद अर्थात इस पूरे अध्यात्म का, इस पूरी कठिन योग साधना का जो प्रसाद उसे मिला, वह प्रसाद सबीज समाधि के रूप में साधक को मिला है। तो मित्रों, आज हम यहाँ रुकेंगे और अगली बार हम इस समाधि पाद को पूरा करेंगे। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, सुनते रहो पठामी संस्कृतम, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।